यसायाह बाब 6। जिस साल उज्जियाह बादशाह ने वफात पाई उस साल मैंने रब को आला और जलाली तख्त पर बैठे देखा। उसके लबास के दामन से रब का घर भर गया। सराफीम फरिश्ते उसके ऊपर खड़े थे, हर एक के 6 पर थे, 2 से वो अपने मुंह को और 2 से अपने पांव को ढांप लेते थे, जबकि 2 से वो उड़ते थे। बुलंद आवाज से वो एक दूसरे को पुकार रहे थे, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, रब्बुल अफवाद कुद्दूस है, दुनिया उसके जलाल से मामूर है। उनकी आवाजों से दहलीजें हिल गईं और रब का घर धुएं से भर गया। मैं चिल्ला उठा, मुझ पर अफसोस, मैं बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि गो मेरे होंठ नापाक हैं और जिस कौम के दरमियान रहता हूँ उसके होंठ भी नजिस हैं। तो भी मैंने अपनी आंखों से बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा है। तब सराफीम फरिश्तों में से एक उड़ता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में दमकता कोयला था, उसने चिमटे से कुर्बानगाह से लिया था। इससे उसने मेरे मुंह को छूकर फरमाया, देख, कोयले ने तेरे होंठों को छू दिया है, अब तेरा कसूर दूर हो गया, तेरे गुनाह का कफारा दिया गया है। फिर मैंने रब की आवाज सुनी। उसने पूछा, मैं किसको भेजूं, कौन हमारी तरफ से जाए? मैं बोला, मैं हाजिर हूं, मुझे ही भेज दे। तब रब ने फरमाया, जा इस कौम को बता, अपने कानों से सुनो मगर कुछ न समझना, अपनी आंखों से देखो मगर कुछ न जानना, इस कौम के दिल को बेहिस कर दे, उनके कानों और आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वो अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, मेरी तरफ रुजू करें और शिफा पाएं। मैंने सवाल किया, रब, ऐ रब, कब तक? उसने जवाब दिया, उस वक्त तक कि मुल्क के शहर वीरान और सुनसान, उसके घर गैर आबाद और उसके खेत बंजर न हो। पहले लाजिम है कि रब लोगों को दूर दूर तक भगा दे, कि पूरा मुल्क तन तनहा और बेकस रह जाए। अगर कौम का 10वां हिस्सा मुल्क में बाकी भी रहे, लेकिन उसे भी जला दिया जाएगा। वो किसी बिलोत या दीगर लंबे चौड़े दरख्त की तरह यूं कट जाएगा कि मढ़ ही बाकी रहेगा। ताहम ये मढ़ एक मुकद्दस बीज होगा जिससे नए सिरे से जिंदगी फूट निकलेगी।